तुलसीदास ने कहा जिह्वा सांपिनी वदन बिल, जिह्वा सांपिनी वदन बिल जेन जपई हरि नाम। हरिदास को कोड़े पड़ते फिर भी हरि नाम नहीं छोड़ता। तुलसीदास ने कहा जिह्वा सांपिनी वदन बिल, ये शरीर रूपी बिल में जिह्वा रूपी सांपिनी है, अगर भगवत चर्चा नहीं सुनती तो फिर चिल्लाता रहेगा, अशांत होता रहेगा, दुख बनाएगा। दुख की मैन्युफैक्चरिंग हमारा मन करता है अगर भगवत भाव अंदर नहीं है तो। अगर अपने मन में भगवत कथा है या भगवत भाव है, भगवत रस का ज्ञान है और भगवान का प्रसाद पाने वाले संतों का सानिध्य है, तो फिर अपना चित्त उस परमात्मा रस से पावन होने में देर नहीं लगती है। मन की दो धाराएं हैं, एक जो हमारे सामने आता है उस जगत को मन देखता है, दूसरा देखे हुए के विषय में जो हमारी वृत्ति भीतर प्रतिक्रिया करती है या निर्णय करती है उसको मति कहते हैं। तो इस मति में और मन में जब तक मेल होता है तो वो जीवन उसका उन्नत होता है। कभी कभी मन के विचार कुछ और मति का निर्णय कुछ, उसका जीवन खिंचाव तनाव में और अशांति में बह जाता है। मन और मति एक हो उसके लिए एक ही उपाय है कि मन और मति को जहां से पोषण मिलता है उस एक का ज्ञान, एक की प्रीति, एक में विश्रांति पाने का अभ्यास। मन कुछ कहता मति का निर्णय कुछ होता है। कुटुंब में भी मति मति भिन्न होती है तो कुटुंब में अशांति होती है, मन की वृत्तियां वृत्तियां भिन्न होती है तो कुटुंब में कलह होता है। मन की वृत्तियां भिन्न भिन्न हो लेकिन मति में समझ बढ़िया हो तो भिन्न भिन्न वृत्तियां, जैसे भिन्न भिन्न हमारे दृश्य देखने सुनना भिन्न है, खाना चखना भिन्न है, फिर भी वृत्ति एक है, इसी प्रकार मति में अगर ज्ञान आ जाए तो मन की वृत्तियां भिन्न होने के बावजूद भी, कभी कभी निर्णय भिन्न होने के बावजूद भी घर में अशांति का कोई कारण नहीं है। जब ज्ञान से हम दूर होते हैं और मन को मन की पकड़ में आ जाते अथवा तो कोई मति की पकड़ में आता है तो घर में कलह पैदा होता है, समाज में अशांति और दुख पैदा होता है। तो जिसके मति में भगवत ज्ञान नहीं है, जिसके मति में मूल ज्ञान नहीं है, वे ऊपर ऊपर की तरंगों में अटक जाते हैं। अखरन में जे अड़िया से चाढ़ी चढ़िया की न की, जन्म जन्म भरमत फेरियो मिट्यो न मन को त्रास। मन त्रास देता गया, कभी मन कुछ कहता है कभी मन कुछ कहता है, मति कभी कुछ कहती है कभी कुछ कहती है। नानक जी कहते जन्म जन्म भटकत फेरियो मिट्यो न मन को त्रास, कह नानक हरि भज मना निर्भय पावे वास। हरि को भज, उस चैतन्य स्वरूप का स्मरण कर, उसका ज्ञान पा तो निर्भय जगह पे तेरे को वास मिलेगा, तू स्थित होगा। जगत की ऐसी कोई पदवी नहीं है जो भय से आक्रांत न हो, परिवर्तितता से आक्रांत न हो और वियोग से आक्रांत न हो। निर्भय वास करो, निर्भय एक तुम्हारा चैतन्य आत्मा है, परब्रह्म परमात्मा है, वही मराठाओं का गजानंद स्वामी है, झूलेलाल वाले सिंधी साईयों का वही झूलेलाल है, रामानुजियों का राम है, वल्लभाचार्यों का वल्लभ है, मोहम्मद का अल्लाह है, कबीर का अव्यक्त है और नानक का अकाल है। आद सत जुगात सत है भी सत, नानक हो से भी सत। तुम्हारा मन की वृत्ति पहले नहीं थी बाद में नहीं रहते है, बुद्धि का निर्णय पहले नहीं था और बाद में वैसा नहीं रहेगा, लेकिन उसकी गहराई में जो तुम्हारा परमेश्वर है वो पहले था अभी है और बाद में भी रहेगा, उसका थोड़ा ख्याल करो तो कल्याण हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। आंखों में तू है जिसके दिल में ख्याल तेरा, जिसके आंखों में तू है परमेश्वर, भिन्न भिन्न देखता है लेकिन भिन्न भिन्न की गहराई में तू जिसकी आंखों में है, आंखों में तू है जिसकी, दिल में ख्याल तेरा, मुश्किल नहीं है उसको होना विशाल तेरा। परमात्मा विशाल है, अनंत अनंत ब्रह्मांड उस परमेश्वर में है। हमारा जो सूर्य है वो पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, पृथ्वी उसके आगे 13 लाखवां हिस्सा है, और वो सूर्य आकाश गंगाओं में सबसे छोटा है। ऐसी कई आकाश गंगाएं आकाश में है, और ये आकाश गंगाएं जिस आकाश में है वो आकाश 5 भूतों का एक भूत है। ये 5ों भूत प्रकृति के एक कोने में पड़े हैं और प्रकृति उस परमात्मा के कोने में पड़ी, और वो परमात्मा तुम्हारा आत्मा होकर बैठा है। सोचो तुम्हारा परमेश्वर कितना विशाल है। लेकिन मेरे मन में जो आई वही हो गया तो मैं बड़ा हो गया, मेरे मन की नहीं हुई तो हाय रे हाय। कभी तेरे मन की होगी तो कभी पत्नी के मन की होगी तो कभी पड़ोसी के मन की होगी, और जब किसी के मन की नहीं होती तो समझ ले कि तेरा भाणा मीठा लागे, जो तिद भावे सो भली कार। अपने चित्त को ज्ञान संयुक्त रखो। सब इच्छाएं किसी की पूरी नहीं होती और सब इच्छाएं किसी की अधूरी नहीं रहती। कुछ पूरी होती है, कुछ अर्ध पूरी होती है, पर कुछ नहीं पूरी होती। सब इच्छाएं अगर पूरी होने लगे मनुष्य जात की, अथवा हाँ मनुष्य जात की सब इच्छाएं पूरी होने लगे तो संसार में नरक हो जाएगा। कोई नहीं चाहता है कि हम मर जाएं, जयराम जी की, जब मरेंगे नहीं तो दूसरे जन्म के कहां से। मृत्यु भी एक पड़ाव है, जैसे रात को आराम करते शरीर पड़ता है बिस्तर पर, सुबह फ्रेश होता है, ऐसे प्रकृति माता तुम्हारे को जो तन दिया और जो खिलौने दिए, तुम खेलते खेलते उब जाओगे। इस खिलौने से खेलते खेलते बच्चा खेलता, माँ उठा लेती है, उस समय बच्चा रोता है, लेकिन माँ जब खिलाती पिलाती सुलाती और फ्रेश करके फिर भेजती है, नए नए खिलौने देती है, तो बच्चे का नित्य नवीन रस प्रकट होता है। ऐसे संसार में से प्रकृति जब जब उठा लेती है तो इस शरीर रूपी बच्चे को, मन रूपी बच्चे को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन प्रकृति माता जब नया तन देकर भेजती है फिर नई सुबह और नई सुहावनी खबरें आ जाती है। जो हारा मांदा है, थका है, उसके लिए तो सूर्य पुराण पुरुषोत्तम 200 करोड़ वर्ष पुराना है, अब क्या रखा है सूरज में, बहुत पुराना है सूरज। लेकिन जिसके जीवन में नित्य नवीन उत्साह है, उसके लिए सूर्य हर रोज सुबह सूर्य नया है, नई उमंग है, नया आनंद है। ऐसे सूर्यों का सूर्य जो तुम्हारा ज्ञान स्वरूप परमात्मा है, उसके विषय में तुम्हें अगर प्रेम है, आनंद है, तो तुम्हारे लिए हर वृत्ति, हर श्वास, हर कदम तुम्हारे अंदर नया आनंद, नया माधुर्य, नया सुख, हर रोज बहार। बाहरी बाग जे वांगुर रहे दिलशाद तो ज्ञानी, रही दुनिया में दुनिया खां रहे आजाद तो ज्ञानी। न दिल में द्वेष धारे थो, न कहें सारी सा उन जी, न कहें दुनिया जी हालत जो, करे फरियाद तो ज्ञानी। जिसको उस परमेश्वर तत्व का, अपने वास्तविक मैं का ज्ञान हो गया, उसका दिल हमेशा सुखमय रहता है, आनंदमय रहता है, माधुर्य से समा रहता है। ब्रह्मज्ञानी का भोजन ज्ञान, ब्रह्मज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, ब्रह्मज्ञानी की मत कौन बखाने, नानक ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने। ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म का वेता, ब्रह्मज्ञानी का एक संग हेता, उस एक के साथ हेत है और अनेक वृत्तियों का उपयोग है। हम लोगों का अनेक वृत्तियों के साथ एक हेत है, तो अनेक वृत्तियां एक जैसी तो नहीं रहे, वृत्तियां तो बदलती रहेगी, परिस्थितियां बदलती रहेगी। इस दुनिया में ऐसा कौन सा शरीर है जो नहीं बदला, ऐसा कौन सा मन है जो नहीं बदला, ऐसा कौन सा मित्र है जो नहीं बदला, ऐसी कौन सी परिस्थिति जो नहीं बदली। जो बदलने वाली चीजों को अबदल करके सुखी रखना चाहते हैं, वो अपने को संघर्ष और तनाव और दुखों में ही झोंकते रहते हैं। गैलीलियो ने आविष्कार किया कि सूर्य खड़ा है, पृथ्वी घूमती है, लोगों ने विरुद्ध उनके मुकदमा कर दिया। यहाँ तक कि उस जमाने के पोप ने भी गैलीलियो के खिलाफ मुकदमा जारी करवाया। न्यायाधीश ने कहा, पोप जैसा व्यक्ति भी तुम्हारे खिलाफ है गैलीलियो, तुम अपना बयान वापस ले लो, नहीं तो कोर्ट को आदेश करना पड़ेगा, तुम्हारी खाल खिंचवाई जाए। गैलीलियो ब्रह्मज्ञानी तो था नहीं, सूली पे चढ़ने के लिए तैयार तो था नहीं। गैलीलियो ने कहा, अच्छा कोर्ट कहती हो पोप भी दुराग्रह करता है, तो मैं कह देता हूं कि पृथ्वी नहीं घूमती, पृथ्वी घूमती घूमती नहीं है, पृथ्वी खड़ी और सूर्य घूमता है, लेकिन सच कुछ हो तो जो घूमती है सो घूमती रहेगी और जो खड़ा है सो खड़ा ही रहेगा। ऐसे ही प्रकृति घूमती है और प्रकृति से बना हुआ पंच भौतिक शरीर भी घूमता है, इस पंच भौतिक शरीर में रक्त भी घूमता है और रक्त के अंदर कीटाणु भी चुप नहीं बैठते, जय राम जी बोलना पड़ेगा। तो जो घूमती है सो घूमती है, लेकिन उसको जो खड़ा देखता है साक्षी सो देखता है। तुम खड़े के साथ जुड़ जाओ, तुम अखंड के साथ जुड़ जाओ, तो तुम्हारा अखंड आनंद, अखंड ज्ञान और अखंड जीवन का साक्षात्कार हो जाएगा। फिर खंड खंड का तो खेल होगा और अखंड में विश्रांति होगी। भरोसा कर तू उस अखंड पर, तुझे बुलंद हौसला मिलेगा, ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोज नित्य नया आनंद आएगा। कहीं सुख है कहीं दुख है, ये जीवन धूप छाया है, कहीं सुख है कहीं दुख है, ये जीवन धूप छाया है। ऐसी में ही बिता डालो, हंसी में ही बिता डालो, बितानी ही ये माया है। जो सुख आए तो हंस देना और दुख आए तो हंस देना, क्योंकि दोनों अतिथि हैं, आए हैं। जो घर में आता है तो हंस के मिलना चाहिए, वे लोग कंगले हैं कि अतिथि आ जाए और मुंह चढ़ा के बैठ जाए, मेहमान घरे आवे मोढ़ हाड़ा बार वगैरह बैसी जाए। नहीं नहीं, भले पधारो भले पधारो। नामदेव के सामने अंधेरी रात में भूत प्रकट हो गया, नामदेव की बुद्धि देखो कितनी शुद्ध। नामदेव कहते भले पधारो लंबकनाथ, भले पधारो लंबकनाथ। लंबा लंबा भूत खड़ा हो गया। धरती पे चरण आकाश लो माथ, योजन भर के लंबे हाथ, भले पधारो लंबकनाथ, भले पधारो लंबकनाथ। सुर संकादि गीत तुम्हारे गाए, नाथ आज नामदेव को करो सनाथ, भले पधारो लंबकनाथ। अंतर्यामी ईश्वर ने देखा कि तो भूतड़े में मेरे को देखता है, भगवान वहां प्रकट हो गए, नामदेव को दीदार हो गया और भूत का कल्याण हो गया। भूत में भी भगवान देखने वाले लोग जिस धरती पे, उसी धरती के लोग माँ में भगवान नहीं देख पाते, बाप में भगवान नहीं देख पाते, मित्र में भगवान नहीं देख पाते, संत में भगवान नहीं देख पाते। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि राम जी, मैं बाजार से गुजरता हूं तो मेरे लिए दुष्ट लोग क्या क्या अफवाह उड़ाते हैं, क्या क्या आरोप करते हैं, लेकिन मेरा दयालु स्वभाव है। मनुष्य को चाहिए कि संत का दुर्गुण न ढूंढे और उस पर आरोप न करे। एक भी संत में सद्गुण है तो लेकर अपना कल्याण करें। आज हिंदू धर्म के प्रचारकों में या कुछ कुछ ब्लैकमेल करने वाले मैगजीनों में तो एक ऐसा होड़ लगी है कि जहां लोगों को शांति मिलती है, माधुर्य मिलता है, जीवन की उलझी गुत्थियां सुलझती है, ऐसे संत और समाज के बीच पुलिया बनने के बजाय वे लोग संत और समाज के बीच खाई बनकर समाज को कौन सी खाई में फेंकना चाहते वो भी पता नहीं चलता है। लेकिन हिम्मत वाले सज्जन लोग है, ऐसे मैगजीनों को और ऐसा कुप्रचार करने वालों को उठाकर धराशायी कर देते हैं और सत्संग की यात्रा तो होती रहती है, माधुर्य का रस तो बरसता रहता है। भगवान बुद्ध जेतवन में रहते थे, उनका यश कीर्ति सज्जनों को तो मालूम था, लेकिन दुर्जन जलते थे। उन्होंने प्लानिंग किया, एक वैश्या को खरीद लिया। वैशा रात को जाती जेतवन इलाके में जाकर ठहरती और सुबह आती सावश्री नगरी में। वैशा से जानबूझकर वे लोग बाजार में पूछते, तू रात भर कहां गई थी। जैसे बांद्रा एक इलाका है, पार्ले एक इलाका है, बोरेवली एक इलाका है, ऐसे जेतवन का इलाका था। तो जेतवन में बुद्ध भी रहते थे, तो वो बोलती थी मैं तो जेतवन थी, और जिसको लोग बहुत मानते ने उसके पास में थी। अब तुम समझ गए, तो क्या बुद्ध के पास थी? हाँ हाँ, जब बड़ा ग्राहक मिले तो फुटकर धंधा कौन करे। हमें तो सारी रात उधर बहुत ठीक लेता है, मनमाना इनाम भी मिलता रहता है, इसलिए मैं रोज शाम को चली जाती हूँ, उनको खुश करती हूँ, रात भर उनके बिस्तर पर होती हूँ और सुबह फिर चली आती हूँ। धीरे धीरे कुप्रचार ने जोर पकड़ा और महाराज जो कान के कच्चे और मती के कच्चे थे, ऐसे लोग बुद्ध से टूटने लगे। आनंद ने कहा भंते लोग टूट रहे हैं। बोले जो टूटने चाहिए उनको टूटने दो, जो पनखर आती है तो कच्चे कच्चे पत्ते जो लगने के काबिल नहीं वो तो टूट जाते, लेकिन जो मजबूत होते लगे रहते। लेकिन वो मजबूत भी टूटने के करीब करीब हुए। आखिर समाज असमंजस में पड़ गया। उन्हीं लोगों ने प्लानिंग की और राजा से मांग की कि बुद्ध के विषय में इतना प्रचार हो रहा है, जांच की जाए। जांच का आदेश मिला, जांच करने वाली कमेटी, पुलिस पुलिस सीआईडी वाले आए। जिस दिन आने वाले उसकी रात को, कल सुबह आने वाले तो आज रात को, उसी वैशाख को खूब शराब पिलाया। चार पांच आदमी उसके साथ गए और जेतवन में उसके साथ पांचों आदमियों ने संसार सेक्सी काम करके उसका गला दबा के बुद्ध के बगीचे में रातों रात उस वैशाख को गाड़ दी। और सुबह कमीशन जांच करता करता बुद्ध के आम के बगीचे में गए। उन लोगों में से कोई अच्छा दिखाने वाले भी घुस गए। साहब हमें इधर कुछ डाउट पड़ता है, वैशा रोज सुबह तो आ जाती थी लेकिन आज जेतवन से लौटी भी नहीं हो, बुद्ध के बगीचे में ही होगी, बुद्ध के कुटीर में तो नहीं दिखी, तो बगीचा छान मारा, जहां खोद काम किया था रात को गाड़ी थी लोफर में, वहीं इशारा किया गया और खोद के दिखाया, निकला उस वैशा का शव। आज तक तो वैशा कहती थी मैं बुद्ध के पास जाती हूँ, लेकिन बुद्ध का कुप्रचार होने से बुद्ध ने अपना पाप दबाने के लिए उसकी हत्या करके उसको बगीचे में गाड़ दिया। आनंद कहता है हद हो गई पाप की, महापुरुष के ऊपर कीचड़ उछालने की हद हो गई, बनते कुछ करो, ऐसों को श्राप दो। बनते कहता है वक्त बीत जाएगा, अपने अचल में रहो, देखो क्या होता है। जिन्होंने आरोप लगाए वे कौन से नरक में पड़े होंगे मुझे पता नहीं, लेकिन बुद्ध को तो अभी भी हम लाखों करोड़ों लोग आदर से देखते हैं, मानते हैं। स्वामी विवेकानंद के प्रति भी वैश्याओं को भेजा जाता था और ईसाई मिशनरियां उनका खुलकर कुप्रचार कर दी थी, रामतीर्थ का, विवेकानंद का। फिर भी विवेकानंद और रामतीर्थ को हम लोग लाखों लाखों हृदय से स्नेह करते हैं। जिसने अचल में स्थिति कर ली है उसके जीवन में भी आंधी तूफान और आरोप आते हैं, सुख दुख आता है, मान अपमान आता है, लेकिन वे पुरुष अचल तत्व में टिके हैं। भगवान वेदव्यास को नारद जी ने कहा कि महाराज आपने शास्त्र तो लिखे हैं फिर भी लोग दुखी और अशांत हो रहे हैं, आपके शास्त्रों का फायदा नहीं लेते। उसका कारण है कि आपने ये तो लिखा कि पत्नी को क्या करना चाहिए, पति को क्या करना चाहिए, पुत्र कैसा होना चाहिए और पति पत्नी को आपस में कैसा व्यवहार करना चाहिए, एक दूसरे की उन्नति कैसी करनी चाहिए, ये तो आपने लिखा। और जो अति शराबी कबाबी हैं उनको भी मोड़ने के लिए कभी कभार भोग लगाकर इन चीजों का उपयोग करने की आपने छूट छाट दी, वो छूट छाट की बात को पकड़ लेंगे, लेकिन जब तक मनुष्य को भीतर का सुख नहीं मिलेगा तब तक दी हुई छूट छाट के दुरुपयोग में ही अपने को गिराएगा। महाराज आप लोगों के पतन को देखकर चिंतित हो कि मेरे इतने सारे शास्त्र होने पर भी, दिया होने पर भी लोग कुएं में गिर रहे हैं और दुखी हो रहे हैं। महाराज उनके दुख का कारण है कि उनको सुख की मांग है और विषय विकारों का सुख जितना भोगते हैं दादर की खुजली जैसा है, कबीरा कुत्ते की दोस्ती दो बाजू जंजाल, रीझे तो मुंह चाटे और खीजे तो पैर खाटे। इनको संसारी व्यक्तियों को सुख जिसमें देखता है वे इच्छाएं, इच्छित वस्तु मिलने पर भी वो इच्छाएं पूरी नहीं होती, इच्छाएं और बढ़ती है। जैसे अग्नि में घी डालो तो और भभक, और इच्छाएं पूरी नहीं होती तो भी अपने को दुखी मानते हैं। वस्तु मिल जाती है तो आसक्ति के कारण दुखी होते, और नहीं मिलती है तो ग्लानि के कारण दुखी होते हैं। महाराज इनको सुख चाहिए और इन्हें भगवतीय सुख मिले, ऐसा ग्रंथ आप लिखो। और भगवतीय सुख तो भगवान ब्रह्मा जी ने मुझे जो चार श्लोक बताए, सृष्टि का कारण क्या है, जीव की मुक्ति कैसे हो, जीव ब्रह्म क्या, वास्तविक सनातन संबंध कैसा, सृष्टि का मूल कारण क्या है, और सुख वास्तविक सुख का है, इस प्रकार का श्रीमद् भागवत का चार श्लोकों का ज्ञान ब्रह्मा जी से सुना था। व्यास जी को बताओ, व्यास जी ने समाधि करके श्री कृष्ण के चरित्रों को देखा, श्री कृष्ण के चरित्र देखते गए और श्लोक बद्ध करते गए। श्लोक बद्ध श्लोक तो करे, चरित्र देखकर लिखे कौन। भगवान गणपति का आवाहन किया, गजानंद महाराज को प्रार्थना किया कि मैं श्री कृष्ण की लीलाएं देखूं, श्लोक बद्ध करके बोलता जाऊंगा बंद आंखें, आप उसको लिखते जाइए महाराज। गजानंद महाराज लिखने बैठे गणपति भगवान। गणपति ने कहा कि तुम लीलाएं देखते, श्लोक बनाते, बोलते, मैं तो लिख डालता हूँ, लेकिन दूसरा श्लोक आने में बीच में मेरा समय व्यर्थ जाता है। तब व्यास जी ने कहा कि जो श्लोक मैं बोलता हूँ उसको आप लिख तो लेते, लेकिन उसमें कोई अपूर्णता या कमी हो तो है रिद्धि सिद्धि के स्वामी, आप उसमें पूर्ति कर दीजिए। व्यास जी ने 18,000 श्लोक बोल दिए। गणपति महाराज ने पूरा भागवत ग्रंथ लिख दिया। व्यास जी ने पूछा कि मैं तो बोलता ही रहा, लेकिन आप तो चुप ही चुप थे, आपने तो कभी एक शब्द तक नहीं बोला, प्रभु ऐसा क्यों? तो भगवान गणपति कहते हैं कि मुनि शार्दुल, हर दिए में जलते हुए दिए में उसके जलने का कारण, उसकी रोशनी फैलाने का कारण है तेल। किसी दिए में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है, और जो जो दिया ज्यादा तेल खर्च करता है वो जल्दी बुझ जाता है, और जिसकी लौ कम तेल खर्च करती है वो लंबा समय तक रहता है। ऐसे मनुष्य जीवन का दिया है श्वासों का, जो ज्यादा व्यर्थ की बातें करता है उसके व्यर्थ के श्वास भी खर्च होते, व्यर्थ का कलह भी पैदा होता है। हे व्यास जी, मैंने संयम का प्रथम सोपान, वचो गुप्ति, संयम का प्रथम सोपान है वचो गुप्ति, अर्थात वाक का संयम, बिन जरूरी क्यों बोलना, आप तो बोलते जाते थे, मुझे लिखना था, फिर बीच में मैं व्यर्थ का क्यों बोलूं, अपनी वाणी का व्यय क्यों करूं। जो वाणी का व्यय नहीं करते उनकी वाणी का बड़ा प्रभाव पड़ता है, जो वाणी का व्यय नहीं करते व्यर्थ का उनके जीवन में फालतू कलह नहीं होता, जो वाणी का व्यय नहीं करते वो फालतू झूठ भी नहीं बोलते। एक आदमी आया, बोले स्वामी जी ये बड़ा सज्जन आदमी, बड़ा सच्चा है और बहुत बोलता है, जो बहुत बोलता है वो सच्चा कैसे होगा, सत्संग तो करता नहीं, बहुत बोलता है तो संसार का बोलता है, तो झूठ बोले बिना कैसे बोले। बोले सेठ है, बड़ा ईमानदार है, बड़ा सेठ है, जब बड़ा सेठ है तो बड़ा ईमानदार कैसे होगा, कुछ न कुछ बेईमानी किया होगा तभी तो बड़ा सेठ बना होगा, जयराम जी की। बोले ये बड़ा लॉन्ग लाइफ है और बड़ा संयमी है, संयमी है तो लॉन्ग लाइफ है, लेकिन संयम छोड़ा तो मन भी चंचल, मति भी चंचल और जीवन भी व्यर्थ हो जाता है। इसलिए अपने जीवन में 10 घंटे नहीं तो 5-5 नहीं तो 2 घंटे मौन का अभ्यास करो, 1-1.5 घंटा मन को देखने का अभ्यास करो कि मन क्या क्या सोचता है। तुम कागज पेंसिल लेके बैठो, मन से पूछो तुम क्या क्या चाहते हो, जो चाहता है वो भी बोलता जा, मन बोलता जाए तुम लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, 1 घंटा 1.5 घंटा लिखो, फिर देखो कि मन जैसा पागल खाना दूसरी जगह कहीं नहीं। मैंने सुना था कि एक शराबी दारू पी के जा रहा था, कार पंचर हो गई, पर स्पेयर व्हील लगाने के लिए लगे हुए व्हील के बोल्ट खोलता गया, उल्टा उल्टाल में नशे नशे में रखते गया, और पीछे एक नाली बह रही थी गटर, खुली नाली, लुढ़कते गए बोल्ट। दूसरा व्हील जब लगाने को बैठा तो देखा के सारे नट बोल्ट तो चले गए, वो नगर परिषद को गालियां देने लगा कि पैसे खा जाते, चुनाव के टाइम में तो मीठी मीठी बातें करते, फिर तो मिलते भी नहीं, और गटर खुले, गंदगी, और हिंदुस्तान में तो हद से ज्यादा गंदगी, सड़कों पर धूल और डस्ट, प्रदूषण निवारण चिल्लाते तो है लेकिन कोई साफ सफाई नहीं रखते, और इतना बड़ा गटर खुला है, ऐसा वैसा उसको गालियां देने लगा नगर परिषद के आदमियों को, म्युनिसिपैलिटी के कॉरपोरेटरों को। इतने में सामने एक पागल खाना था, मेंटल हॉस्पिटल, उसके चबूतरे पे एक पागल बैठा था आराम कुर्सी, वो सब देख रहा था। वो आया नजीक, बोले अब तुम कॉरपोरेटर को गालियों देते हो कि वो तो आइसक्रीम खाते होंगे या गपशप लड़ाते होंगे, और तुम गालियां देके अपनी अशांति क्यों बढ़ा रहे, तुमको घर जाना है ना। बोले घर कैसे जा सकता हूँ, मैं बड़ी प्रॉब्लम में हूँ, खुदा की कसम में मुसीबत में पड़ गया। बोले तीन व्हीलों का एक एक नट बोल्ट खोल के चौथे व्हील में लगा दे और घर पहुंच जा। वो बोलता है सुभान अल्लाह, तुम्हारी इतनी बढ़िया आइडिया, मिस्टर आप कौन है। उसने कहा मैं सामने मेंटल हॉस्पिटल का पेशेंट हूँ, पागल खाने में इलाज कराने आए। बोले तुम पागल होते हो भी इतनी आइडिया रखते हो। बोले मैं पागल तो जरूर हूँ लेकिन तेरे जैसा शराबी तो नहीं हूँ भाई। भागवत सुनने वाला निर्भय हो जाता है, भागवत समझने वाला निशंक हो जाता है, उसको धर्म के विषय में, ईश्वर के विषय में, कर्तव्य के विषय में कोई शंका नहीं रहती। भागवत को सुनने वाला निश्चिंत हो जाता है, वो चिंता के चक्कर में, डिप्रेस आदि के चक्कर में नहीं आ पाता। भागवत की कथा से निर्भयता, निशंकता, निश्चिंतता तो आती है, चित्त में परमात्मा प्रसन्नता प्रकट होती है। भागवत को हजम करने वाला मृत्यु के भय से पार हो जाता है। जिसकी मृत्यु होती है वो मैं नहीं, और जो मैं है उसकी कभी मौत नहीं। वो अपनी नकली मैं को, मिथ्या मैं को भी जान लेता है और सत्य मैं को मैं के रूप में पहचान लेता है। ये भागवत धर्म है, जैसे पिता की वस्तु में सारे पुत्र पुत्रियों का हक होता है, ऐसे भागवत भगवान की वस्तु है। जैसे कुटुंब का बड़ा पूरे परिवार की भलाई सोचता है, कुटुंब के बड़े की चीज अगर देने में आए तो पूरे परिवार के हित में दी जाती। कुटुंब के बड़े में तो मोह या पक्षपात हो सकता है, लेकिन ईश्वर के बड़पन में न मोह है न पक्षपात है। भागवत ईश्वर की प्रसादी है, उसमें केवल साधु संत या भक्त या ऋषि मुनि का ही अधिकार नहीं, केवल हिंदू भाइयों का ही अधिकार नहीं, अपितु मनुष्य मात्र का अधिकार है। ना ना, भागवत धर्म में तो पशु पक्षी का भी अधिकार माना गया है। अश्वमेघ सहस्त्राणि बाजपे शतानि च शुकशास्त्र कथायाश्च कलानार्हन्ति षोडशीम। अश्वमेघ सहस्त्र माने हजार, बाजपे सैकड़ों करे, फिर भी ये शुक शास्त्र के आगे सोलमा हिस्सा भी नहीं शुक्र शास्त्र के ज्ञान का, इतना बड़ा भारी महात्म्य है। भागवत के चार नाम, इसको भागवत बोलते हैं। भगवत जनों की कथाएं हैं और वृत्ति भगवताकार होती है। रागाकार, द्वेषाकार, अस्मिताकार भाव मिटकर भगवताकार भाव बन जाते हैं। दूसरा इसका नाम है भागवत महापुराण, और सब पुराण है इसमें तो महान तत्व की बात है, जीव ब्रह्म की एकता की बात है, इसको महापुराण कहा। तीसरा नाम है इसका परमहंस संहिता, जो सुखदेव जी महाराज विरक्त होकर एकांत में जा रहे थे, पिता व्यास पीछे पीछे जा रहे, पुत्र सुनो सुनो, अद्वैत निष्ठा के कारण वृक्षों ने उत्तर दिया। ऐसे सुखदेव जी परमहंस महापुरुष, जो गृहस्थी के घर केवल गाय दोलो उतनी देर खड़ा रहते हैं, दूध ले लेते हैं, उनका पुण्य बढ़ जाता है, गृहस्थियों का खुद चल जाते हैं। ऐसे सुखदेव जी महाराज निराकार के उपासक भी इस भागवत की कथा से अपने चित्त को और रसीला बनाते, इसलिए इस ग्रंथ का नाम परमहंस संहिता है। चौथा नाम है कल्पद्रम। इस भागवत की कथा से जिस भावना से बैठे, जैसे धुंधुकारी इस कल्पना से बैठा कि मेरी प्रेत योनि से सदगति हो, भागवत की कथा से उसकी प्रेत योनि से सदगति हो। शौनक ऋषि यज्ञ की पूर्ति में भागवत सुनते हैं, उनका यज्ञ संपन्न हुआ। कोई भक्ति के लिए सुनता है, कोई ज्ञान वृद्धि के लिए सुनता है, तो कोई चित्त की विश्रांति पाकर सामर्थ्य बढ़ाने के लिए सुनता है। जैसे जैसे भाव से सुनते हैं ऐसा ऐसा फल प्राप्त होता है, इसलिए इसको कल्पद्रम नाम दिया। श्रीमद् भागवत की कथा मनुष्य मात्र के लिए हितकारी है। गांधी जी ने जब भागवत कथा सुनी तो बोलने लगे कि भागवत की कथा में इतना रस और इतना ज्ञान भरा है, मुझे पहले पता ही नहीं था। मालवीय जी महाराज कहते हैं कि भागवत को सुनने वाला रसमय जीवन बिताने की कला सीख लेता है, और विपत्ताओं से डरता नहीं, दबता नहीं, और संपदा पाकर फूलता नहीं, और अपने पिया को परमेश्वर को दूर या लोक लोकांतर में नहीं मानता, उसका परमात्मा अपना आत्मा ही हो जाता है। दिल ने तस्वीरें हैं यार, जबकि गर्दन झुका ली और मुलाकात कर ली, ये भागवत की कथा का महात्मा। कृपी के पास केवल एक लंगड़ी गाय थी, उसी के दूध से अपना घर चलाती थी। दुरासा ऋषि पहुंचे, कृपी ने उनका स्वागत किया दूध दही आदि से। कृपी उदास क्यों है? बोले द्रोणाचार्य इतने बड़े धनुर्विद्या के ज्ञाता हैं, लेकिन हमारे घर में तो गाय के लिए दूध के लिए एक लंगड़ी गाय मात्र है, इसी से गुजारा चलाना पड़ता है। विधाता ने गरीबी लिख ली हमारे लेख में। दुरासा जी ने कहा नहीं नहीं, मनुष्य अपने भाग्य का विधाता है। कल का अजीर्ण आज के उपवास से मिटता है, कल का लड़ाई झगड़ा आज के कॉम्प्रोमाइज से मिटता है, कल का कर्ज आज की भरपाई से मिटता है, सिर्फ कल का प्रारब्ध आज के सुकृत से बदला दिया जा सकता है। कृपी तू ऐसा कर, अभी सूर्य ग्रहण आ रहा है, तो जिस गाय के दूध से घर का गुजारा चलाती एक दिन उपवास कर देना, और इसी गाय के दूध से जो उपज हो वो सत्पुरुषों की सेवा में लगा देना, तो तेरा अनंत गुणादान तेरे को ऐहिक दरिद्रता से छुड़ा देगा। ये दान करने के बाद हुआ भी ऐसा कि धृतराष्ट्र के मन में हुआ कि इनके यहां बहुत सारी गाय भेजते, और फिर धन धान्य से वे पूर्ण हो गए। इसको स्मार्त कर्म बोलते। देवे दस पावे, एक देवे सौ पावे, एक देवे हजार पावे, उसकी लिमिट होती है स्मार्त कर्म की। भगवतीय कर्म की कोई लिमिट नहीं होती। जैसे राजा मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहा है, मालिन ने कहा राजन हार ले जाओ, चार सीढ़ी और ऊपर गया, दूसरी मालिन ने कहा अंधाता ये हार स्वीकार करो, ले जाओ भगवान के लिए। दोनों मालिनों से हार लेकर भगवान को चढ़ाकर राजा नीचे उतरा। पहली मालिन से पूछा कितने पैसे, मालिन ने समझा 25 पैसे का है, 4 आने का है, राजा से 2 रुपए मांगे, 2 रुपए दे दिए, उस जमाने के 2 रुपए बड़े थे। फिर नीचे उतरा, पहली मालिन को पूछा कितने पैसे, बोले वो पैसे आपसे, ना ना ना, आपने मेरा हार स्वीकार कर लिया, मुझे आनंद है, आप तो नगरपति है, सम्राट है, और मुझ गरीब का हार आपकी सेवा में पहुंचा, इसका मुझे बहुत आनंद है राजन, मैं तो चाहती हूँ कि रोज आपकी सेवा में मेरा हार स्वीकार हो जाए। राजा से उसने एक पाई भी नहीं ली। पहली मालन देखती है कि कितनी बेवकूफ है, मैंने तो 4 आने के बदले 2 रुपए ले लिए 25 पैसे के बदले, और इसने पाई भी नहीं ली। राजा ने मंत्री को कहा इस मालिन का एड्रेस ले लेना। समय पाकर मालिन के पुत्र को बुलाया गया, उसको ठीक जगह पर ऊंची नौकरी दे दी, क्योंकि ये देश की वफादार महिला है, उसका पुत्र भी माँ के संस्कार से सिंचा हुआ चित्त वाला। मालिन को चाहिए तो 10-20-25 एकड़ दे दो जमीन। अब वो हार के बदले में नहीं दे रहे, हार की कीमत गिनकर नहीं दे रहे, वो राजा अपनी ओर से दे रहा है। ऐसे राजाओं का राजा जो भगवान है, भगवान के नाते सत्पुरुषों की अगर सेवा की जाती है, भगवान के नाते ही भगवान का भजन किया जाता है, भगवान के नाते ही शुभ कर्म कर दिए जाते हैं, तो भगवान जब अपनी ओर से देता है तो वो भागवती फल होता है। उसके लिए 10 गुना 100 गुना 1000 गुना की कोई वैल्यू नहीं है। करोड़ों करोड़ों जन्म के कर्म हैं, लेकिन भगवत कथा सुनते सुनते जीवात्मा अपने मन को भगवान को देने लग जाता है, अपने शुभ कर्मों को भगवान के अर्पित करने लग जाता है। फल क्या होता है कि बदले में भगवान अपना आपा उसके अंतःकरण में प्रकट कर देता है। अंतःकरण में भगवान अपना आपा प्रकट कर देता है, अपने स्वरूप का ज्ञान प्रकट कर देता है, वो साधक ब्रह्मज्ञानी हो जाता है, सिद्ध बन जाता है। ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी, उसकी आंखों से आध्यात्मिक अमृत, आध्यात्मिक तरंग, आध्यात्मिक वेव्स बरसते हैं, जो थके मांदे अशांत दुखी चित्तों को शीतलता शांति प्रदान करने का सामर्थ्य रखते हैं। वो आंखों के द्वारा एक हंसी मात्र डाल देता है तो समाज में महफिल में रौनक आ जाती है। ऐसे पुरुष को पाकर बुद्धिमान साधक कहते हैं, गुरुजी तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे ही रहो, महफिल का रंग बदल जाएगा, गिरता हुआ दिल भी संभल जाएगा, संभल जाएगा। काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, मद में, मात्सरी में, चिंता में, तनाव में, टेंशन में जो हमारा दिल गिर रहा है, वो ऐसे पुरुषों की हाजिरी मात्र से हमारा दिल संभलने लगता है। भगवान जब देते हैं तो इतना सारा देते। वो साधक स्वयं तो सिद्ध हो जाता है, वो तो उतर जाता है, लेकिन उसके संपर्क में आने वाले भी करने लगते। सतरति लोकान तार्यति, सतृप्तो भवति, वो तो तृप्त रहता है, औरों को तृप्त कर देता है अपनी वाणी से, अपने दर्शन से, अपनी अमी दृष्टि से, निगाहों से। तीन प्रकार की हंसी होती है। एक तो आम लोग हंसते ठाका मार के, अच्छा है, हंसना चाहिए, जरूरी है। आपकी सूक्ष्मतम नाड़ियां है न साबुन से स्वच्छ होती है, न टिनोपोल के टच से स्वच्छ हो गई, न और कोई क्रिया से स्वच्छ होती है, केवल निर्दोष जोरों की हंसी से बहुत आपकी नाड़ियां स्वच्छ होती है, आपको हंसना चाहिए। एक होती है आम हंसी, जन साधारण हंसते। दूसरी होती है बुद्धिमानों की हंसी, मुंह में हंसते, गालों में हंसते, चित्त प्रसन्न होता है लेकिन स्माइल दे देते। तीसरी तो आधुनिक हंसी है, जो एयरपोर्ट पे सर्विस करने वाले लोगों को सिखाई जाती है, होठ चौड़े करने के। हम पहली बार अमेरिका गए, हमने सोचा कि ये सब इतने लोग प्रसन्न, सबसे हंस के बात करते, फिर धीरे से गौर करके देखा तो इनको ट्रेनिंग मिली होती है, होठ चौड़े होते लेकिन दिल तो वैसे का ही वैसा रहता है। मैंने मार्क किया दूर से, केवल हमको आदर देने के लिए लोग ऐसे नहीं, उस सब पैसेंजर के साथ ट्रेनिंग होती है उनको। ये हंसी तो सेल्समैन ही हंसी है, इसकी बात मैं नहीं करता, तीन हंसियों की बात करता हूं। एक होती है आम हंसी, दूसरी होती है बुद्धिमानों की हंसी, तीसरी होती है योगेश्वरों की हंसी। योगेश्वरों की हंसी जैसे कृष्ण हंसते हैं तो कैसा हंसते हैं, निगाहों की हंसी बड़ी सात्विक, बड़ी कल्याणकारी और बड़ी पावरफुल होती है। जहां तक निगाह पड़ जाए और आपकी हंसी को झेलने वाला मिल जाए, उसका दिल पावन हुए बिना नहीं रहेगा, वह कृष्ण की हंसी। किसी किसी महापुरुष के पास वो चीज होती है, निगाहों से वे निहाल हो जाते हैं जो संतों की निगाहों में आ जाते। ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी, ब्रह्मज्ञानी का दर्शन बड़ भागी पावई, ब्रह्मज्ञानी को बल बल जावई, ब्रह्मज्ञानी की मत कौन बखाने, नानक ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने। तुकाराम महाराज ने कहा, जगत में सर्व प्रकारे सुखी कौन आहे, मन्ना तुम्ही शोधुनी पाहे। खोजते खोजते फिर उस महापुरुष को उत्तर मिला, दृष्टि ज्ञानमय कृत्वा पश्चित हरिरेव जगत, दृष्टि ज्ञानमय करो और हरिमय जगत देखे, वो पूर्ण रूप से जगत में सुखी आए। सिंधी संत बोधराज जी ने कहा, न दिल में द्वेष धारे थो न कैसा रीस आ उन जी, न कहे दुनिया जी हालत तो जो करे फरियाद तो ज्ञानी, बहारी बाग जे वांगुर रहे दिलशाद तो ज्ञानी, रही लोडन में लोडन खा रहे आजाद तो ज्ञानी, इल्म उनो अमल कायम, इल्म तो उसका बहुत गहरा है और अमल करता है उसका चित्त कायम, फिर भी उसको अहंकार नहीं आता। इस बात को अष्टावक्र मुनि ने जनक को कहा, अष्टावक्र संहिता में, यत पदम प्रेप सवो दीना शक्रादय सर्वदेवता अहो तत्र स्थितो योगी हर्षम न उपगच्छति, जिस पद को पाए बिना देवताओं का राजा इंद्र भी अपने को कंगाल मानता है, वह आत्म पद व ब्रह्म पद पाकर योगी गर्व नहीं करता है, घमंड नहीं आता, ये भी एक आश्चर्य है। कंगले आदमी को 10-20 हजार मिल जाते तो फूल फटता है, अथवा 10-20 हजार की कैपेसिटी वाले को 10-20 लाख मिल जाता है तो उसकी चाल निराली हो जाती है, किसी की 10-20 करोड़ में तो किसी की 1,000-2,000-5,000 करोड़ में चाल बदल जाती है, लेकिन अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी जिसको मिल जाता है फिर भी उसे अहंकार नहीं होता है, ये भागवती फल नहीं तो और क्या है। तीन टूक कॉपी न की भाजी बिना लूण, तुलसी हृदय रघुबीर बसे तो इंद्र बापड़ा कौन, इंद्र को बापड़ा कह देता है वो महापुरुष, फिर भी चित्त में गर्व नहीं। पीतवा ब्रह्म रस योगिनो भूतवा उन्मत इंद्रो मपी रंकवत भाष्यत, अन्य से का वार्ता, औरों की क्या बात कहे आप। श्रीमद् भागवत के आरंभ में ये नहीं कहा गया कि कृष्णम परम धीमहि, शिवम परम धीमहि, विष्णु परम धीमहि, नहीं, सत्यम परम धीमहि, जो सत्य स्वरूप है वही कृष्ण है, वही शिव है, वही अम्बा है, वही अल्लाह है, वही राम है, वही विट्ठल है, हम उसका ध्यान करते। अगर कृष्ण परम धीमहि कह देते तो जो शिव को मानने वाले हैं और किसी देवी देवता को मानने वाले उनको संकोच हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई देवी देवता या अल्लाह नहीं है जो असत्य हो। इसलिए व्यास जी ने मंगलाचरण में कहा, सत्यम परम धीमहि, हम उस सत्य स्वरूप का ध्यान करते हैं, देखो कोई मत पंथ या मजहब की उलझन में न उलझे, इसलिए सबके अधिकार के लिए ये प्रार्थना रख दी गई, प्रारंभ में मंगलाचरण रख दिया गया, सत्यम परम धीमहि। नहीं तो व्यास जी लिख सकते थे कृष्णम परम धीमहि, रामम परम धीमहि, शिवम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। और सत्य उसे कहते हैं जो तीनों काल में एक रस है, सृष्टि के पहले, सृष्टि के समय, प्रलय के बाद भी जो रहता है उसको सत्य बोलते हैं। आद सत जुगात सत है भी सत, नानक हो से भी सत, उस सत स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते। श्रीमद् भागवत सुनने के लिए सूत जी के चरणों में शौनक ने प्रार्थना की कि महाराज अब कलयुग का प्रभाव दिख रहा है, हमने इसके दुष्परिणामों से बचने के लिए सहस्त्र वर्षीय यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन यज्ञ के बीच में जो दोपहर को समय मिलता है उस समय आप हमें भागवत की कथा सुनाएं। आप ज्ञान के सूर्य हैं, आपका चित्त भगवत प्रसाद से पावन है। महाराज लोक विकारों से अहंकार से और हीन मति से आक्रांत है, मंदासु मंद मतया अल्पायु वाले लोग, मति मंद भाग्य मंद और कलह प्रिय है युग जो कलयुग है। इस कलयुग के दोषों से बचने के लिए आप हमें श्रीमद् भागवत का अमृत पान कराइए। सौनक जी का प्रार्थना सुनकर सूत जी ने ध्यान किया भगवान व्यास का, भगवान सुखदेव जी का। मुझे जो सुखदेव जी ने एकांत में ज्ञान सुनाया मैं तुमको सुनाता हूं। एक कंजूस सेठ मर रहा था, नौकर ने देखा कि कितनी 15 दिवाली बिताई, कभी बोनस तक नहीं दिया, अब सेठ मर रहा है, सब छोड़ के जा रहा है। नौकर नजदीक आया, रसोया, बोले मैं आपका पर्सनल सेवक हूं, चंपी भी कर लेता हूं और आपकी बीमारी में भी मैंने सेवा की। सेठ जी अब आप दुनिया से जा रहे हैं, बीमारी में तो कई रुपए तुम्हारे चले गए, सेठ जी अब आप दुनिया से जा रहे हैं, जाते जाते मुझ गरीब का तो कुछ तो कर जाओ, मेरे लिए भी तो कुछ दे जाओ, मेरे लिए कुछ तो छोड़ जाना। सेठ ने कहा बेवकूफ मूर्ख, मैं तो सारी दुनिया छोड़े जा रहा हूं, फिर तेरे लिए क्या छोड़ के जाऊं। जयराम जी सारी दुनिया छोड़ के जा रहा हूं, अब तेरे लिए क्या छोड़ूंगी। जिसका मेन कारण गलत होता है उसका परिणाम भी गलत आता है, साधन गलत तो साध्य भी गलत बन जाता है। हम चाहते कि कर्म चाहे हम गलत करें और फल मिले बढ़िया, नहीं नहीं, जो हक की कमाई है, सच्चाई की कमाई है, पसीने की कमाई है, उसका जो आनंद आता है वो 2 नंबर की कमाई के ऐश में उतना आनंद नहीं आता। जयराम जी की जो सहज स्वभाव मित्रों से मिलने का आनंद आता है वो अपना आडंबर दिखा के मित्र को इम्प्रेस करने में वो आनंद नहीं आता। रामतीर्थ कहा करते थे कि हे मानव, तुम अपना समय शक्ति बड़े बड़े भवन और फर्नीचर सजाने में व्यर्थ मत करो, भवनों को और फर्नीचरों को सजा सजा कर आने वाले अतिथि और मित्रों को प्रभावित कर करके आप अपने और मित्र के शत्रु मत बनो, आप अपना सहज जीवन जियो। मित्र को बड़े बड़े वैभव और मेहमान को बड़ी बड़ी चीजें दे देकर उसको प्रभावित करने के बजाय आप सहज में निर्दोष प्रेम उसको दो और एक प्याला पानी भी दोगे तो तुम्हारा मित्र सचमुच में उन्नत होगा और तुम भी उन्नत होगे। लेकिन आडंबर से मित्रों को प्रभावित करते रहोगे तो आपकी सच्चाई दबती रहेगी और मित्र के अंतःकरण में आपके लिए रहेगा कि इसके इस मेरे बेटे के पास माल तो बहुत है, ईर्ष्या की आग उसके चित्त में पैदा होगी। इसलिए आप अपने धन का वैभव का प्रदर्शन करके मित्रों को प्रभावित मत करो, अपनी सरलता और मित्र में परम मित्र है उसका प्रदर्शन करके उसका और अपना कल्याण करने के रास्ते लगो। बहुत बढ़िया बात है और आपको जगती इसलिए ताली बजाई, तो अब अमल में लाने की कृपा कीजिए। जयराम जी की आज तो होड़ लगी है एक दूसरे को इम्प्रेस करने की। किसी संत से भी मिलने जाते तो मेरे पास ये है, मेरे पास ढींगड़ा है, फलाना है, टिंगड़ा है, एक दूसरे को इम्प्रेस करने के सिवा और कोई बात ही नहीं होती। मन क्रम वचन छांडी छल, जब लग जनन तुम्हार तब लग स्वप्ने हूँ सुख नहीं, करे कोटि उपचार। हर्ष तो हो जाएगा थोड़ी देर के लिए, किसी को इम्प्रेस करा वो प्रभावित हो गया, आपको थोड़ा हर्ष होगा, लेकिन अंदर का सुख अलग बात है, हर्ष दूसरी बात है। नानक जी कहते हैं हर्ष शोक जाके नहीं, वैरी मित समान, कह नानक सुन रे मना, मुक्त ताही ते जान। जिसको हर्ष और शोक बांध नहीं सकता, प्रभावित नहीं कर सकता है, वह मुक्त आत्मा है। आप मुक्त आत्मा होने के लिए जन्मे हैं, बंध मरने के लिए आपका जन्म नहीं हुआ है, फंस मरने के लिए जन्म नहीं हुआ है। बड़े बड़े भवनों में अथवा बड़े बड़े फर्नीचरों में अथवा बड़े बड़े धन के ढेरों के नीचे दब मरने के लिए तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है। इनका सदुपयोग करके सत्य स्वरूप परमात्मा के शिखर पर आपको पहुँचने के लिए धरती पे भेजा गया है, इस बात को कभी मत भूलना। जोधपुर में यशवंत सिंह का राज्य था, तब की बात है। जोधपुर के पास छोटा सा गांव था और फूलीबाई नाम की एक विधवा बाई अपना थेपड़ियां थेप के गुजारा करती थी। उसके विषय में तो बहुत सारी बातें हैं। उसको सिद्धाई मिली थी, गुरु मंत्र जपते जपते मंत्र को सूक्ष्म सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा दिया। एक दिन यशवंत सिंह उनके दर्शन करने गए। यशवंत सिंह को बड़ी शांति मिली। भाई की तो झोपड़ी थी, ग्वार की रोटी, ग्वार की सब्जी, बाजरे की रोटी बनाई खाई। कोई सैनिक आए, पसार हुए, पानी मांगा, बेटे दौड़ते दौड़ते पानी, खून गर्म है, फिर पानी पीना ठीक नहीं, रोटी का टुकड़ा खा। बोले माता जी मैं अकेला नहीं, मेरे साथ 3 बटालियन है, चिंता ना करो। ढक दिया कपड़ा और अपने मंत्र शक्ति का उपयोग करते सबको टुकड़ा टुकड़ा देती गई। फौजियों ने जाकर यशवंत सिंह को बताया कि माई में इतनी सारी सिद्धाई। यशवंत सिंह ने थोड़ी बहुत प्रशंसा सुनी थी, यशवंत सिंह दर्शन करने आया, बड़ा प्रभावित हुआ। यशवंत सिंह ने अपनी व्यथा रखी उस माई के चरणों में कि रानियों को जो मांगती वो चीजें सब देता हूँ, फिर भी आपस में लड़ती रहती है, ग्रह कला हमारा बहुत है। माता जी आप चलो, जरा चरण रज आपकी पड़ेगी, आपकी चरण रज से मेरा रनवास पावन होगा, आपके दो वचन सुनेंगी तो रानियों के कान पावन होंगे, आपकी दृष्टि पड़ेगी तो हमारा वह भवन पवित्र होगा, पवित्र पुरुषों की देवस पवित्र होते हैं, माताजी आप हमारे मकान में जरा चरण रज घुमाने को पधारो। हाँ ना करते हुए यशवंत सिंह ने माताजी को राजी कर लिया और माताजी पहुंची रनवास में। अब वो फूलीबाई के साथ राजा कैसे आए, रानियों और माता के बीच पुरुष का होना अच्छा नहीं लगता, ऐसा समझ के राजा तो राज दरबार में गए और दासियों को बता दिया कि माताजी के पैर घुमाओ और रानियों को जरा सत्संग मिल जाए। रानियों ने देखा कि इतना मोटा थिगड़ा लगा हुआ और ये बुढ़िया रनवास में कैसे घुस गए। रानियां तो हार श्रृंगार कर रही थी, अपने को कुछ विशेष मान रही थी। फूलीबाई को देखकर रानियां ठाका मार के हंसने लगी कि ये कौन सा प्राणी आ गया अंदर। फिर भी फूलीबाई को दुख नहीं हुआ, करुणा उपजी कि इनका भला हो। फूलीबाई ने कहा देखो बहना, ये गहने गांठे जो पहन रही हो इससे तुम्हारी शोभा नहीं, ये तो तुम्हारे शरीर की शोभा है, जिसको जला देना है उस शरीर की शोभा के लिए हार श्रृंगार करो, मैं मना नहीं करती हूँ, लेकिन तुम्हारी शोभा के लिए भी तुम कुछ करो। फूलीबाई की भाषा में मैं सुना दूं आपको। फूलीबाई ने रानियों को बताया कि गहनो गांठो तनरी शोभा, काया काचो भांडो, फूली कहे ते राम भजो, लड़ो क्यों हो रांडो, आपस में लड़ती क्यों। जोधपुर राजस्थान में है, राजस्थान का सम्राट जिसके चरण छूता है, और वो फूली भाई रानियों को इतना नगत सुनाती है करुणा से भरकर कि सत्संग भागवत की कथा में भारत की उस गरीब महिला की कथा जोड़ने में मुझे आनंद आता और आपको भी मजा आता है। सत्य 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 है। लोग बोलते सत्य कटु होता है, ना ना, सत्य तो अमृतमय है, सुखमय है, मधुरमय है। सूत जी महाराज शौनक को सुनाते कि एक समय देव ऋषि नारद घूमते घामते विशालापुरी में पहुंचे, जहाँ सनक सनंदन सनत सनत कुमार चारों भाई बैठे थे। चारों भाइयों की उम्र तो पूर्वजों के पूर्वज थे, लेकिन योग बल से सदा 5 साल के लगते थे। ज्ञान के पारगामी थे और अपने पर ब्रह्म परमात्मा का उनको साक्षात था। उन मुनीश्वरों ने देखा कि नारद जी इस विशाला नगरी में आ रहे। नारद जी को देखकर मुनीश्वरों ने पूछा कि नारद जी आज आप अतृप्त पुरुष की नहीं दिखाई दे रहे, जैसे किसी का कोई कल कारखाना बंद हो गया हो, अथवा किसी को इनकम टैक्स की रेड पड़ी हो, या अथवा और कोई मुसीबत आई हो, तो जो आदमी जितना जैसा हताश सा और दौड़ा सा जाता है उस प्रकार नारद की दशा देखकर मुनीश्वर ने पूछा कि अतृप्त आदमी की नाय वासना में उलझे हुए जीव की नाय नारद जी आप कहां कहां जल्दी जल्दी जा रहे हो। नारद जी कहते हैं मुनीश्वर कलयुग का प्रभाव ऐसा तो फैल गया है कि कलयुग का मित्र अधर्म जहां तहां अपने पैर पसार चुका है। शांति सुहृदता और माधुर्य मानो धरती से सूख रहा है। मैं पृथ्वी के प्रयाग काशी रंगक्षेत्र पुष्कर हरिद्वार और बड़े बड़े तीर्थों में गया, वहां भी देखा कि मनुष्य को शांति मिलने की कोई व्यवस्था नहीं, वहां भी हाय धमाधम और पाखंडियों ने वहां वास किया। मंदिरों का सत्व यवनों ने नष्ट कर दिया और तीर्थों का सत्व पाखंडियों ने नष्ट कर दिया, कथा का सत्व स्वार्थियों ने नष्ट कर दिया और शांति की कोई कीमत समझने वाला व्यक्ति शांति पाने के लिए भटके तो कोई जगह ही नहीं। पूरी धरती मैंने छान मारी, कहीं सुख और शांति नहीं। शांति धन से बड़ी है, शांति सत्ता से बड़ी है, शांति सौंदर्य से बड़ी है। खूब सुंदर हो और अंदर में अशांत की आग हो तो क्या सौंदर्य किस काम का। शांति सौंदर्य से बड़ी है, शांति सत्ता से बड़ी है, सत्ताधीश और अशांत है तो किस काम का उसका जीवन। शांति धन से बड़ी है, शांति स्वर्ग से बड़ी है, स्वर्ग में रहते और अशांति की आग में जले तो ऐसे स्वर्ग को आग लगाओ। शांति स्वर्ग से बड़ी है, शांति रिद्धि सिद्धियों से बड़ी है, यहां तक कि शांति भगवान से भी बड़ी है। बोले महाराज कैसे, जब तुम्हारा मन शांत होता है तो भगवान प्रकट हो जाता है, शांति के बल से भगवान आता है। जय राम जी की, चित्त शांत होगा तब भगवान प्रकट होता है। शांति भगवान को प्रकट करने वाली है, आध्यात्मिक सामर्थ्य प्रकट करने वाली है। ऐसी शांति महाराज इस कलयुग में देखने को नहीं मिलती। लोग पेट पालो द्विपाद पशु जैसे हो गए, आटा नमक दाल रोजी रोटी और कपड़ा लत्ता की चिंता में भवन के चक्कर में ही पूरे। जिसको छोड़ जाना है उन चीजों के लिए तो मर मिट रहे दिन रात, और जो सदा साथ में रहता है उस परमेश्वर शांति के लिए लोगों को समय नहीं। और जिस किसी को थोड़ी बुद्धि है समय है तो जहां जाओ वहां महाराज कलयुग के मित्र अधर्म ने अपने पैर पसारे।